यह तीनों ही परमात्मा के वाचक हैं। ब्रह्म, ब्राह्मण और यज्ञ, यह तीनों ही इस संसार के व्यवस्था के मूल में है, जिसे हम धर्म का स्वरूप कहते हैं और धर्मो रक्षति रक्षिता। क्योंकि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान का अवतार मात्र धर्म के संरक्षण के लिए होता है और धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से मोक्ष, यह श्रेणी है, अनुक्रम है। तो धर्म है क्या? तो कहा यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन। यज्ञ के द्वारा जो यज्ञ पुरुष भगवान नारायण है, उनका यजन ही यज्ञ है, अर्थात वेद विहित जो अनुष्ठान है वह जो है वह धर्म है। और वेद के द्वारा जो विपरीत मार्ग है, जो ब्रह्म के द्वारा विपरीत मार्ग है, ब्रह्म प्रतिपादित मार्ग है, वेद ब्रह्म का भी नाम है। तो आज जो हम यह पुराण की कथा करने जा रहे हैं, इस पुराण की कथा में सर्वप्रथम 18 पुराणों में प्रथम पुराण ब्रह्म पुराण है। तो ब्रह्म पुराण मतलब ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाला पुराण, यज्ञादि का प्रतिपादन करने वाला पुराण और इस सृष्टि के रक्षा करने वाला पुराण, यह पुराणों में सर्वप्रथम और श्रेष्ठ है। इसमें ब्रह्म वंश की वंशावली बतलाई गई है, राजाओं का उत्पत्ति बतलाया गया है और किए जाने वाले कर्म बतलाए गए हैं। जिन कर्मों को करने के पश्चात व्यक्ति को कभी पश्चाताप नहीं होता कि हमने ऐसा किया, इस प्रकार की स्थिति यहाँ वर्णित की गई है। मैं चाहूंगा कि इस पुराण का मंगलाचरण जरा सुना दूं, जो श्लोक बद्ध है प्रारंभ में, जिसको व्यास जी महाराज ने लिखा है। कारण कि पुस्तक न लेकर के बैठना एक अहंकार होता है और पुस्तक रख करके बैठने से आदमी लाइन से विचलित नहीं होता है, यथा तथ्य का प्रतिपादन करता है। तो इसलिए पुस्तकी भवति पंडित, हमारे गुरु जी का आदेश था कि चाहे जितना भी पढ़ो लेकिन पुस्तक साथ में रखना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं तो उससे वक्ता मार्ग भटक करके अन्यत्र चला जाता है, इसलिए पुस्तक रखना चाहिए। यह नारायण का स्वरूप है, पुराण पुरुषोत्तम है। तो इसका मंगलाचरण है, जरा मैं श्लोक बद्ध करना चाहूंगा, क्योंकि पारायण में तो हम ही करते हैं और हम ही सुनते हैं। यहाँ कम से कम संस्कृत साहित्य का जो रस है वह श्लोक बद्ध कैसे लोगों तक जा, थोड़ा सुनना चाहिए। यस्मात् सर्वमिदं प्रपंच रहितं माया जगत् जायते यस्मिन् स्तिष्ठति याति चान्त समये कल्पानुकल्पे पुनः यं ध्यात्वा मुनयः प्रपंच रहितं विन्दन्ति मोक्षं ध्रुवं तं वन्दे पुरुषोत्तमाख्यममलम् सर्वे नित्यं विभुं निश्चलं यं ध्यायन्ति बुधा समाधि समये शुद्धं पियत् सन्निभं नित्यानन्दमयं प्रसन्नममलम् सर्वेश्वरं निर्गुणं व्यक्ताव्यक्तपरं प्रपञ्चरहितं ध्यानैकगम्यं विभुं तं संसारविनाशहेतुमजरं वन्दे हरिं मुक्तिदं वन्दे हरिं मुक्तिदं। इन दो श्लोकों के द्वारा वेद व्यास जी सर्वप्रथम जो पुराण की रचना की, ब्रह्म पुराण की, उस ब्रह्म पुराण का मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण मतलब हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें कहीं से किसी प्रकार का विघ्न न उपस्थित हो, क्योंकि विघ्न उपस्थित होता है तो कार्य पूरा नहीं होता। तो व्यास जी ने बहुत सारी तपस्या की थी, उससे विघ्न उपस्थित नहीं होता। यहाँ फिर हम मंगलाचरण करने की क्या जरूरत थी? तो कहा कि मंगलाचरण इसलिए करते हैं कि यदि जो ग्रंथ वाचक होगा, जो सुनने वाले होंगे, वो भी इसी बहाने भगवान के नाम का स्मरण करेंगे तो उनका मंगल होते चलेगा और उनमें आचार विचार उत्पन्न होगा कि हमारी परंपरा में मंगल किया जाता है, इसलिए हमें भी मंगलाचरण करना चाहिए, हमारे आचरण में मंगल हो, इसके लिए ग्रंथ में उन्होंने लिख दिया। तो उस मंगलाचरण का भाव क्या है यह बतला रहा हूं। यस्मात् सर्वम इदम् प्रपंच रहितम्। यस्मात् सर्वम इदम्, यह जो सारा जगत है जिससे यह उत्पन्न होता है, जिसकी माया से यह जगत उत्पन्न होता है, जिस परमात्मा में यह जगत स्थित होता है और फिर कल्प में अनुकल्प में पुनः उत्पन्न हो करके विलीन हो जाता है, जिसका ध्यान करके मुनि लोग प्रपंच रहित होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं, ऐसे पुरुषोत्तम जो भगवान जो मल रहित है, नित्य है, विभू है और निश्चल है, स्थिर है, उनका हम ध्यान करते हैं, उनका हम वंदन करते हैं, जिनका मुनि लोग करके मुक्त हो जाते हैं, वैसे वेद व्यास जी भी उनका ध्यान कर रहे हैं। अभिप्राय यह है कि हमें भगवान हरि का ध्यान इसलिए करना चाहिए कि जगत के काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब हमें बाधित न करें। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जे संत। अब यह बात अच्छी है कि कामना न हो, लेकिन बिना कामना के तो कोई होगा ही नहीं कार्य। तो कहा कि नहीं, कामना जो यदि शास्त्र की मर्यादा के भीतर की हो तो वह दुख नहीं देती है, लेकिन कामना यदि शास्त्र से अधिक होने लगी, मर्यादा से अतिरेक उसका होने लगा, तब वह कामना दुखदायी बन जाती है। इसलिए उस कामना को हमें मर्यादित करने के लिए शास्त्र का अध्ययन करते रहना चाहिए। क्यों? तो कहा कि हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते न जात काम कामानाम उपभोगे न साम्यति। हविषा कृष्ण वर्तमेव उपभोगे न साम्यते। तो यदि कामनाएं एक पूरी होती है तो उसके बाद फिर दूसरी कामनाएं उत्पन्न हो जाती है, फिर तीसरी उत्पन्न हो जाती है, फिर मनुष्य का मनोबल बढ़ते चला जाता है और कामनाओं की पूर्ति के लिए वो बहुत सारे हथकंडे अपनाता है, जो नहीं करना चाहिए उस पर वो उतारू हो जाता है, उसको करने के लिए वह उद्धत हो जाता है। ऐसी स्थिति न हो इसके लिए संसार, इसलिए इन कामनाओं को नियंत्रण में रखा जाए, इसलिए शास्त्र का भगवान हरि का चिंतन किया जाए, भोग मर्यादित हो, इसके लिए भगवान का ध्यान करते हैं मुनि लोग। ऐसे फिर दूसरे मंगलाचरण में कह रहे हैं यम ध्यायन्ति बुधाः। बुध मतलब पंडित लोग, जिनको समाधि के समय में भगवान का ध्यान करते हैं, ऐसे भगवान का हम ध्यान करें फिर वह समाधि समय में शुद्ध है। और वियत सन्निभम, आकाश जिस प्रकार से निर्मल होता है उस तरह से वह परमात्मा का चरित्र निर्मल है। उस परमात्मा के निर्मल चरित्र का हम ध्यान करेंगे तो हम भी निर्मल बनेंगे और सत्वगुण से संपन्न बनेंगे। जब सत्वगुण संपन्न बनेंगे तो हमारी ऊर्ध्वगति होगी, हम देवता के तरह से होंगे। और ये तो भारत भूमि है जहाँ देवता भी आकर के तरसते हैं। गायन्ति देवा लगी तिकानी धन्यास्ते भारत भूमि भागे। कहते हैं महाराज